सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ पाक्षिक श्रावकों के जो आठ मूल गुण होते हैं का स्वरूप समझाया गया था, थोड़ा सा विषय और बच गया है। पूल अहिंसानुवृत, स्थूल सत्यानुवृत, स्थूल अचौर्यानुवृत, स्थूल ब्रह्मचर्यानुवृत, स्थूल परिग्रह परिमाण अनुवृत्त, ये पांच अनुवृत्त पालन करते हैं पाक्षिक श्रावक जिनका चौथा गुणस्थान होता है। स्थूल अहिंसानुवृत्त को ग्रहण करने वाला श्रावक स्थूल हिंसा से बचता है, जैसे चरम की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, रेशम वस्त्रों का उपयोग नहीं करना, शिकार नहीं खेलना और पंच उदुम्बर फल पांच फलों का त्याग करना, क्योंकि इन फलों में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है और इनके भक्षण से त्रस जीवों का घात होता है और यह स्थूल पाप है, इसलिए इनका त्याग करता है। ऐसे ही जो जीवन में ये समझ में आता है कि यह स्थूल पाप है तो उन सभी स्थूल पापों को वह त्याग करता है। स्थूल सत्यानुवृत्त ये दूसरा है। इसमें ऐसा सत्य वह असत्य वह नहीं बोलता या सत्य वचन नहीं बोलता जिसके माध्यम से दूसरे के जीवन का घात हो जाए, उनका जीवन संकट में पड़ जाए, ऐसा असत्य वचन या सत्य वचन भी नहीं बोलता। कौन सा श्रावक? पाक्षिक श्रावक। स्थूल अचौर्यानुवृत्त इसमें क्या करता है? इसमें डाकू नहीं बन सकता, यानी चोरी करके ही अपने जीवन व्यतीत करना ये स्थूल पाप कहलाता है, स्थूल चोरी पाप है ये। तो इसमें चोरी नहीं करता, डाकू बनकर जीवन नहीं जीता और जो बैठे बैठे ही धन आता है और जुआ खेलने से आता है, लाटरी जुआ वगैरह वह खेलता नहीं। मतलब लाटरी खेलना, जुआ खेलना ये सभी मानवीय कृत्य नहीं है, ये भी स्थूल पाप के कोटि में ही आता है। जुआ लाटरी और मटका नहीं खेलता, चोरी के व्यसन का वह त्यागी होता है। चौथा है कुशील पाप का त्याग। स्थूल कुशील का त्याग करने से स्थूल ब्रह्मचर्य अनुव्रत जीवन में प्रकट होता है। तो सदार संतोष व्रत धारण करके अन्य स्त्रियों में माता बहन कन्या के समान भाव रखना, यह व्रतों को लेने से परस्त्री व वेश्यागमन ये दोनों व्यसन स्वयमेव छूट जाते हैं। व्यसन अलग बात है और ये स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत अलग बात है। स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत को स्वीकार करने पर व्यसन स्वयमेव छूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है? स्वदार संतोष व्रत का वह धारण करता है, यानी पति पत्नी दोनों को पति के लिए क्या बोलेंगे, स्वधार संतोष, और पत्नी के लिए क्या बोलेंगे, एक पतिव्रत। हाँ, एक पतिव्रत बोला जाता है। ये एक पतिव्रत और स्वधार संतोष व्रत, ये पाक्षिक श्रावक के कुशील पाप के त्याग रूप स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत है। यही ब्रह्मचर्यानुव्रत जो एक पत्नी व्रत स्वीकार कर लिया, यही ब्रह्मचर्यानुव्रत है। पांचवा है स्थूल परिग्रह परिमाण अनुव्रत, अपने पुण्य के उदय में प्राप्त परिग्रह रूप संपत्ति में संतोष धारण करना। अपने पुण्य के उदय में जो कुछ भी आ रहा है उसमें संतुष्ट रहना, पाप बुद्धि से इधर उधर का एक्स्ट्रा इकट्ठा करने का, संग्रह करने का भाव न करना, अपने पुरुषार्थ से अपने पुण्य के उदय में जितनी धन संपत्ति आती है उसमें संतुष्ट रहने का नाम ही ये स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत है। यहाँ पर कुछ त्याग नहीं है, कुछ भी छोड़ने लेने देने का नहीं है, जो आ रहा है उसमें संतोष भाव धारण करना। यह संतोष गुण एक बहुत बड़ा गुण है। इस संतोष गुण के आए बिना हम प्रतिमाओं की ओर बढ़ नहीं सकते। संतोष गुण आना प्रथम आवश्यक है। संतोष गुण के बिना व्रत नहीं धारण कर सकते। इसलिए आठ मूल गुणों को सर्वप्रथम रखा गया है। आठ गुण मूल गुणों में हम क्या शिक्षा लेते हैं, संतोष गुण आता है हर चीज में, और एक विवेक जागृत होता है जिस विवेक के माध्यम से हम अपने जीवनचर्या के स्थूल पापों को भी रोकते हैं, स्थूल चोरी को रोकते हैं, स्थूल जो असत्य पाप था उसको रोकते हैं। तो स्थूल स्थूल पाप को रोकना इसमें होता है, ये पंच अनुवृत रूप और तीन मकार त्याग रूप, मध्य मांस और मधु, ये तीन हैं। मध्य में क्या करता है वो, शराब का त्याग करना तथा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि स्वास्थ्य के हानिकारक वस्तुओं का त्याग करना, क्योंकि इनको खाने के व्यसन व आदत से शरीर एवं मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम सर्वप्रथम प्रतिमाधारी बनने से पहले एक सभ्य मानवीय जीवन को धारण करने जा रहे हैं, तो उसके दौरान हमें सबसे पहले अपने स्थूल व्यसनों को छोड़ना होता है। जैसे किसी ने मद्य का त्याग कर दिया तो नशीले वस्तुओं का त्याग किया। नशीले वस्तु कौन कौन होते हैं, तो तंबाकू भी नशीली वस्तु है, बीड़ी भी नशीली वस्तु है, सिगरेट भी नशीली वस्तु है, गुटखा तो है ही, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, कितने ही लोग गुटखा खाकर नष्ट हो गए हैं। ये सब दाढ़ सड़ जाता है, जल जाता है, संवेदनहीन होता है, अनुभव ही नहीं आता क्या है, सोना हो जाता है ऊपर, जैसे बहुत देर तक बैठने से पैर सोना होता है ना, वैसे दाढ़ दांत और सभी सोने हो जाते हैं, और आखिर एक दिन वो जल करके संवेदनहीन होने से सड़ने लगता है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। गुटखा खाने वालों को इतना सारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है और यहाँ पर पूरा छेद दिखता है। जीते ऐसे जीते हैं दुख से। तो नशीली वस्तुओं का प्रभाव बहुत बुरा प्रभाव होता है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो। सिगरेट से तो कैंसर होता है, निकोटिन नाम का जहर होता है उसमें, उसके वजह से शरीर में कैंसर पैदा होता है। तो ये नशीली वस्तु सिगरेट भी है, बीड़ी भी है, इनसे दूर रहना कर्तव्य होता है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पाक्षिक श्रावक को। मांस का त्याग, इसमें क्या करता है, मांस सेवन का त्याग कर शाकाहार से रहना कर्तव्य बनता है। शाकाहार से जो रहता है वह मूल गुणधारी ही कहलाता है, क्योंकि वह जैन कुलाचार का आद्य कर्तव्य है। शाकाहारी रहना जैन कुलाचार का आद्य कर्तव्य है, और इसका पालन नहीं रहेगा तो कुलाचार भ्रष्ट हो जाता है। प्राणियों के शरीरों से निर्मित कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना। मांस त्याग किया है तो स्थूल पाप तो है ही, ऊपर भी त्याग किया अहिंसा अनुवृत्त में, जैसे रेशम का वस्त्र, चर्म के वस्तुओं का त्याग, शिकार नहीं खेलना, जैसा वो कहा है, यहाँ पर भी प्राणियों के शरीरों से निर्मित कोई भी वस्तु हो उसका उपयोग में नहीं लाना। जैसे कोलगेट जो हड्डियों से बनता है, हड्डियों का पाउडर से निर्मित होता है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक आदि जो प्राणियों के रक्त से बनते हैं, ये स्थूल हिंसा की कोटि में होते हैं, इनका त्याग करता है। प्राणियों पर सदा दया भाव रखना चाहिए, जीवो और जीने दो सिद्धांत के प्रति विश्वास रखना, यही जैनत्व है। मधु त्याग, शहद में अनंत त्रस जीवों का अस्तित्व होता है, उनकी हिंसा टालने हेतु शहद नहीं खाना। शहद में त्रसकायिक जीवों की उत्पत्ति, असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए मद का सेवन नहीं करता पाक्षिक श्रावक। वो एक तरह से वो उसी में आएगा, जुआ ही है वो, पाक्षिक श्रावक को नहीं करना चाहिए। अगर आठ मूल गुण धारण कर लिया तो उसको नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे तो स्थूल हिंसा से बचेंगे। पाक्षिक श्रावक के ये हो गए आठ मूल गुण, आठ से ही हमें यात्रा करना है, और कहाँ जाकर के रुकना है, आठ पर ही रुकना है। अन्य कर्तव्य भी कुछ हैं जिनको पाक्षिक श्रावक को करना चाहिए, वह करता है, जैसे रात्रि भोजन अवश्य त्यागना चाहिए, यह एक जैन कुलाचार की मर्यादा है, ये पहचान है। रात को नहीं खाते हैं तो ये बताया जाता है कि हो सकता है ये जैन होगा, ऐसा अनुमान करते हैं लोग, क्योंकि जैन धर्म में ही नहीं अन्य धर्मों में भी ऐसे ऐसे श्लोक लिखे गए हैं, रात्रि भोजन करना यह करोड़ों तीर्थ यात्रा करके आने से जो पुण्य लगता है वो पुण्य एक दिन रात्रि भोजन करने से सब सपाट हो जाता है, यानी उससे श्रेष्ठ है ये। रात्रि भोजन नहीं किया तो करोड़ों तीर्थों की यात्रा का फल मिल गया, करोड़ों तीर्थ यात्रा का फल मिल गया, बैठे बैठे कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई खर्च नहीं हुआ, हजारों का लाखों का खर्च करके तीर्थ यात्रा करके आते हैं, और तीर्थ यात्रा में भी रात्रि भोजन करते करते ही तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, कितना व्यर्थ है। रात्रि भोजन त्याग, कम से कम देखो रात को पकाए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए, पकाए हुए अन्न को तो कम से कम दूध पी लो, सूखी वस्तु खा लो, मूंगफली फल खा लो, चलेगा। लेकिन पकाए हुए अन्न में तो बहुत कुछ हिंसा होती है, पकाने में भी हिंसा होती है और पकाने के बाद भी खाते समय में भी हिंसा होती है। रात का खाना ठीक नहीं है। रात में तो चिड़िया पक्षी भी खाने के लिए नहीं निकलते, रात को नहीं खाते वो, देखो हमसे अच्छे हैं वो। रात्रि भोजन त्याग है हर पक्षी का, एक ही पक्षी रात को निकलता है, बाकी कोई एक भी पक्षी नहीं निकलता, एक निकलता है उल्लू। उल्लू रात को ही खाता है वो, दिन को निकलता ही नहीं बाहर, क्योंकि दिखता नहीं, दिन को नहीं दिखता, रात को दिखता है। और यही कारण है कि वो रात को खाता है, खाना पड़ता है। जो रात को खाते हैं तो रात को ही अगले भव में भी खाना पड़ेगा। हाँ, अंडरस्टैंड हो ही गया। उल्लू जीव मरकर उल्लू बनता है, क्यों बनता है? स्थूल पाप करने से। रात्रि भोजन को स्थूल पाप की कोटि में रखा है। कम से कम पाक्षिक श्रावक को क्या करना चाहिए? पकाए हुए अन्न का तो कम से कम त्याग कर देना चाहिए। कुछ भी खा ले, उसी चीजें खा ले, पकाओ नहीं और पके हुए को भी खाओ नहीं, बस इतना त्याग पहले। यहां से शुरुआत, मंगलाचरण, यहीं से मंगलाचरण, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और फिर छठी प्रतिमा में जब जाएंगे ना, उस समय तो पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। प्रतिमाधारी वैसे कोई चीज नहीं खाएगा, किंतु आठ मूल गुण का धारी पाक्षिक श्रावक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कुछ छूट रख सकता है औषधि वगैरह का, लेकिन प्रतिमाधारी को ये छूट नहीं रहता। रात के संबंधित भोजन है, औषधि है इत्यादि का छूट नहीं रहता प्रतिमाधारी को। प्रतिमाधारी पूरी तरह से रात्रि भोजन त्याग करता है, किंतु इनके लिए कृतकारित अनुमोदना से त्याग करे ये नियम नहीं है। कृतकारित अनुमोदना से, कृत से त्याग होता है, अनुमोदना और कारित से त्याग नहीं होता, क्योंकि घर में समस्याएं होती हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको कभी भी भूख प्यास लग जाती है, वो बड़े होने तक तो सेवा करनी पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। तो पहली प्रतिमा से लेकर पांचवी प्रतिमा तक इसका त्याग नहीं है। वो रात्रि भोजन करा सकता है लेकिन स्वयं नहीं करेगा। कौन सी प्रतिमाधारी? पहली से लेकर पांचवी तक का करा सकता है। बच्चों को संभालना पड़ेगा, और कोई किसी को आदत है तो बहुत मुश्किल होता है घर में, वो भी है, और जिनको आदत नहीं है और कुछ परिस्थितियां हैं, सर्विस वगैरह की परिस्थितियां होती हैं, बहुत लेट से आते हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो उस समय में भी कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों को संभालते हुए वो प्रतिमा का पालन करता है, कृत से त्याग करता है, खुद नहीं करता, खुद पानी तक नहीं पीता, औषधि तक नहीं लेता, फल फूल तक नहीं खाता। तो पहली प्रतिमा से लेकर पांचवी प्रतिमा तक इतना वह स्वयं से त्याग करता है। छठी प्रतिमा को धारण करेगा तो छठी प्रतिमा में तो पूरी तरह से फिर कृत कारित अनुमोदना, न स्वयं करेगा, करता तो था नहीं, किंतु कराएगा भी नहीं और अनुमोदना भी नहीं करेगा। इस तरह से छठी प्रतिमा में उसका वो होता है। रात में न खाने से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुलाचार है तो कुल की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। रात्रि भोजन त्याग यह एक महान कुलाचार है। स्थूल पाप का त्याग इसके माध्यम से किया जाता है। रात में न खाने से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जैन धर्म की प्रभावना होती है। पाक्षिक श्रावक अवश्य रात्रि भोजन त्याग करे, अन्य कर्तव्यों में लिखा है। पाक्षिक श्रावक नित्य देव दर्शन करे, पूजन का भी अभ्यास करे, यही नहीं आता है तो, यदि नहीं आता है तो अभ्यास करे। दर्शन व पूजन ये दोनों क्रियाएं विशेष धर्म ध्यान और कर्म निर्जरा के कारण हैं। पाक्षिक श्रावक बनने से कितनी प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का, पाप कर्मों का संवर हुआ, बताया था ना, कितने, 41, 41 का संवर हुआ। और जिनका हमने संवर किया है उनकी निर्जरा भी तो करेंगे, तो कैसे करेंगे, कुलाचार का पालन करते हुए ही उनकी निर्जरा करना पड़ता है। तो कुलाचार महान है, स्थूल पापों का त्याग ये कोई कम नहीं है। 41 कर्मों का संवर के लिए कारण है और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए भी यही मूल है। 8 मूल गुणों को धारण किए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होती। तीसरा, जैन घर में आलू प्याज नहीं बनाना चाहिए, बहुत टेस्टीला होता है महाराज, जिसको क्यों लिख दिया, तो भोजन तो टेस्टी होता है, प्याज के बिना तो टेस्ट आता नहीं है। और हम अपने जीव के टेस्ट के लिए जीवों के घात की तरफ, हिंसा की तरफ हम देखते नहीं हैं। कम से कम घर में तो त्यागना चाहिए, बाहर की बात अलग है, मजबूरी में खाना पड़े बात अलग है, कम से कम घर में तो त्यागना चाहिए, होना चाहिए, मंगलाचरण है, मंगलाचरण में ही फेल रहेंगे तो कैसा चलेगा। कम से कम आलू प्याज नहीं खाना, कंदमूल में, क्योंकि अनंत बताया था, अनंत निगोदी जीवों का समुदाय होता है, अनंत निगोदी जीवों का शरीर होता है, एक एक शरीर में अनंत अनंत आत्माएं होती हैं, जीव होते हैं, एक शरीर के घात में अनंत जीवों का घात होता है, अकाल मरण होता है। तो अपन पूरी एक आलू को, एक प्याज को, एक भी प्याज को पूरा खाएंगे तो शरीर उसमें अनंत हैं और उनमें अनंत, प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं, कितनी बड़ी हिंसा हो गई। देखो, त्रस की अपेक्षा से बहुत ज़्यादा हिंसा न हो इसलिए क्या त्यागा अपन ने, चमड़े का वस्तु का त्याग किया, और क्या त्यागा, हाँ, ये मोटे मोटे बड़ा पाप कह करके त्यागा क्या, नहीं, ये तो त्रस जीवों की हिंसा से बड़ा है। स्थावर जीव भी तो हैं, उसमें बड़ा कौन, ये प्रश्न उठता है। तो कंदमूल ये बड़े हिंसा की कोटि में आते, बड़ी हिंसा की कोटि में कंदमूल आते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, उनमें अनंत जीव नहीं है। जैसे आप लौकी सब्जी, गिलकी की सब्जी, धोड़का, धोड़का की सब्जी, गिलकी की सब्जी, ये सब्जी, बरबटी की सब्जी, करेला, ये जो सूर्य प्रकाश में बड़े होने वाली जो सब्जियां हैं, इसमें जीवों की राशि कम होती है, होती तो है, कम होती है। देखो, कम जीव जिसमें होते हैं उनको पहले देखना चाहिए, वह ग्रहण करने की योग्य है, और अधिक जीव हिंसा जिसमें होती है उसको पहले त्यागने की योग्य है। ऐसे प्रत्येक क्रिया में अपने को देख देख करके अपनी साधना को बढ़ाते हुए जाना चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ से, चतुर्थ गुण स्थान में 8 मूल गुणों से स्टार्टिंग होता है। फिर आपको जैसे जैसे साधना आपकी बढ़ती जाती है, हिंसा अपने आप कम होता जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि जैन धर्म जड़ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, उसमें तो श्वासो श्वास लेना भी हिंसा है, हम नहीं छोड़ सकते, अति नहीं सोचना अति नहीं सोचना है, स्थूल को पहले देखना है। हम स्थूल में क्या क्या कर सकते हैं, मान के चले कि हम 8 मूल गुण का धारण भी नहीं करते तो कम से कम जो कर सकते हैं उसको तो करें। जैसे हम चमड़े का चप्पल नहीं भी चले तो चल सकता है, तो उसको छोड़ो, वो भी तो धर्म है। कहीं से तो स्टार्ट करो, एक एक वस्तु को त्यागते त्यागते। रेशम साड़ी पहने बिना भी चल सकता है तो छोड़ो, क्यों फालतू उसको पाप का भार अपन ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आत्मा के ऊपर पाप भार बढ़ेगा तो वो तो वजनदार बनेगा, नीचे जाएगा। हल्का बनाना है, खाली करना है पाप कर्मों से। तो ये स्थूल त्रस हिंसा त्यागी होकर चर्म वस्तुओं का त्याग करता है जैसे पाक्षिक श्रावक, वैसे स्थूल स्थावर हिंसा का त्यागी होकर आलू प्याज भी त्यागना चाहिए। त्रस हिंसा से बचने हेतु जल को सदा छान कर पीना चाहिए। बहुत सिंपल हैं क्रियाएं। इन सिंपल क्रियाओं को भी हम करने लग जाएंगे तो 41 कर्मों का संवर होगा। यह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती। देखो तिलोय पन्नति ग्रंथ में एक जगह लिखा है, जैन धर्म का 2000 साल पहले का ग्रंथ, उसमें एक जगह लिखा है यह पाक्षिक श्रावक भी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती। इतने आरंभिक स्थूल हिंसा को त्याग करके सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, और यदि वह सत्पात्रों में दान देता है। सत्पात्र कौन कौन से? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र, सुपात्रों में दान देता है तो कहा है वह श्रावक भी कम से कम 3 भव में और अधिक से अधिक 8 भव में मोक्ष जा सकता है। उनके लिए भी बता दिया ये किसकी महिमा? सत्पात्र दान की महिमा। आहार दान, औषध दान, अभय आवास दान, उपकरण दान की महिमा। सत्पात्रों के 4 प्रकार के लिए दान होते हैं। आवास दान, आवास दान, बहुत अच्छा आवास दान करने लगे आप लोग, लेकिन स्पीड कम है थोड़े और, अभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आवास दान सर्वश्रेष्ठ दान है, पाक्षिक श्रावकों का यह मूल धर्म है। अविरत सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक भी सत्पात्र दान देने वाला दाता होता है, और पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक भी प्रतिमाधारी भी सत्पात्र दान देने का दाता होता है। तो ये दोनों दाता दान के महिमा से ही उत्कृष्ट परिणामों के माध्यम से विशुद्ध परिणामों के कारण वे अपने भवों को सीमित कर लेता। कितना भव बताया? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 8 भव। यहां पर पाक्षिक श्रावकों का विषय समाप्त हुआ। इसी पुस्तक में प्रतिमाओं का पाठ भी है, उसको निकाले। कौन सा पाठ? 13वां, पेज नंबर 33। प्रतिमा, प्रतिमा की ओर बढ़ने वाला श्रावक, सुन रहे हैं ना? प्रतिमाओं की ओर बढ़ना चाहता है श्रावक, तो 8 मूल गुणों को तो पूर्णतः पालन करता ही है और सम्यक्त्व का भी पालन करता है। तो इतना करता है अगर, तो पहली प्रतिमा की भूमिका तो बिल्कुल पहले से ही तैयार है। जिनको पाक्षिक श्रावक नहीं बनना है और डायरेक्ट प्रतिमाधारी बनना है तो बन सकता है, किंतु प्रतिमाधारी बनने वाला सर्वप्रथम पहली प्रतिमा को धारण करता ही है। पहली प्रतिमा में 25 दोषों से रहित सम्यक्त्व का पालन करता है। उस प्रतिमा को छोड़कर ऊपर की प्रतिमाओं को धारण करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। सम्यक्त्व पूर्वक ही आचरण को धारण किया जाता है, क्योंकि आचरण चारित्र है और पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन, पहली प्रतिमा का नाम सम्यक दर्शन और दूसरी प्रतिमा का नाम सैमा संयम, चारित्र अनुव्रत। तो इनको प्रतिमाओं को धारण करने से पहले वह अपनी भूमिका में, क्योंकि अब वह स्थूल हिंसा का त्यागी तो पहले ही बन चुका है, कहाँ पर, अष्टमूल गुण में, अब वह और अंदर आएगा। कैसा अंदर आएगा? तो भोजन पान आदि में सबसे पहले, सबसे ज्यादा हिंसा अगर हो सकती है तो पानी से हिंसा होती, पानी से। उस पानी को किस प्रकार से उपयोग करे? आवाज ऐसी क्यों आ रही है? बिगाड़ दिया, देखो आपको नहीं जम रहा, ऑपरेटर नहीं आया आज, आवाज भी आ रही है ना। के माध्यम से और भी कम हो गया, जिनके माध्यम से श्रावक सम्यक दर्शन को धारण कर वह पंच पापों का क्रमशः त्याग करते हुए संयम की ओर बढ़ने का अभ्यास करता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा का स्वरूप क्या हो गया? जिनके माध्यम से श्रावक सम्यक दर्शन को धारण कर पंच पापों का क्रमशः त्याग करते हुए संयम की ओर बढ़ने का अभ्यास करता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। किस ओर बढ़ने का अभ्यास करता है? संयम की ओर। संयम संयम है, वह छठे आदि गुणस्थान में ही पूर्णतः प्रकट होता है। संपूर्ण प्राणी हिंसा का त्याग और इंद्रियों का, पांच इंद्रिय और एक मन, इनका वश करना और इंद्रिय संयम को धारण करने से ही संयम प्रकट होता है। तो संयम की ओर बढ़ने हेतु प्रतिमाओं को धारण करता है, इसका अर्थ ये है कि वह मुनि बनने का अभ्यास प्रतिमाओं के द्वारा करता है। कल के दिन क्या बनना है? मुनि ही बनना है, भले ही इस बहु में न बन सके, लेकिन श्रद्धा तो, संयम धारण करने के प्रति श्रद्धा जारी रहती है। श्रद्धा निरंतर रखता है, ऐसी श्रद्धा के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। तो सर्वप्रथम क्या धारण करता है? सम्यक दर्शन। कोई भी महाव्रत धारण करें या प्रतिमा को धारण करें, प्रतिमा या महाव्रत धारण करने वाला वह श्रावक सम्यक दर्शन को धारण किए बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन को जैन धर्म में दंशन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन चारित्र धर्म का मूल है। चारित्र तो धर्म है ही, परंतु उसका भी मूल, उसका फाउंडेशन, चारित्र का फाउंडेशन सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के फाउंडेशन पर चारित्र का दीवाल खड़ा हो जाता है और उस पर फिर छत डाला जाता है। फिर छत डालने के बाद सारे काम होते हैं। तो सम्यक दर्शन के माध्यम से पंच पापों का त्याग करना ये संवर और निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। सम्यक दर्शन धारण नहीं किया और प्रतिमा को ले लिया, दूसरी तीसरी चौथी आदि प्रतिमा को ले लिया, प्रतिमा को ले, टाइम भी हो गया। सम्यक दर्शन को धारण किए बिना न तो महाव्रत धारण किए जाते हैं न प्रतिमाएं धारण की जाती हैं। यही कारण है कि महाव्रतों को धारण करते समय में भी देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीसरे नंबर में रखा, यानी रत्नत्रय। रत्नत्रय ही महाव्रत है। चारित्र को पहले धारण नहीं किया जाता, सम्यक दर्शन के साथ ही चारित्र को धारण किया जाता है। महाव्रत जब आता है तो सम्यक तो पूर्वक ही चारित्र भी आता है। उसी प्रकार प्रतिमाओं को धारण करते समय प्रथम प्रतिमा को धारण करते हुए ही अन्य प्रतिमाओं को धारण करता है, तो इन प्रतिमाओं को क्रमशः धारण करना पड़ता है। ऐसा नहीं धारण किया जाता कि पहला वाला धारण किया और सीधा जो है ग्यारहवीं प्रतिमा धारण कर ली, ऐसा नहीं होता। ग्यारह इकट्ठे सभी धारण कर सकते हैं, परंतु पहला धारण करके आठवां या सातवां ऐसा धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्रतिमाओं में श्रावक क्रमशः पापों को कम करता 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 ग्यारहवीं प्रतिमा तक पूर्णतः सब पाप छोड़ देता है। पापों को कम करने की सीढ़ियां हैं। यदि वह डायरेक्ट धारण कर ले सातवीं प्रतिमा, तो सातवीं अकेली प्रतिमा को धारण नहीं कर सकता, उसमें सब कुछ आएंगे, नीचे के सभी आएंगे। तो उसमें पहला भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे, इनको धारण करते हुए ही सातवीं प्रतिमा धारण करेगा। ग्यारहवीं प्रतिमा भी सीधा धारण कर सकता है, किंतु कैसे? तो ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करने एक अकेला धारण नहीं करेगा, ग्यारह सभी धारण करेगा। इस प्रकार से प्रतिमाओं को धारण करने का यह क्रम है। इन प्रतिमाओं को धारण करने से पहले श्रावक को अपने भोजन पान में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार का जल उपयोग करना चाहिए, इसकी चर्चा ही प्रमुख चर्चा है। क्योंकि अगर आप घर में रह करके यदि दो प्रतिमा भी पालन करते हैं तो दो प्रतिमा के माध्यम से भी आपका कल्याण संभव है। पांचवा गुणस्थान बनेगा और आठ भव बचेंगे, निश्चित बात है। बाल पंडित मरण करना पड़ेगा, संलिग्ना भी लेनी पड़ेगी, उसके साथ नियम भी है। तो दो प्रतिमा में किस प्रकार से भोजन वगैरह में सावधानी रखी जाती है, जल किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, इस बात को हम कल चर्चा करेंगे, समय पूरा हो गया है।